माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन में पधारे सभी डॉक्टर्स का शांतिवन के डायमंड हॉल में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज के प्रथम सत्र में जिसका विषय है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की महसूसता, इस विषय को गहराई से समझाने के लिए हम सभी के बीच में आदरणीय परम श्रद्धे शीलू दीदी जी पधार चुकी हैं। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आपका पुष्प गुच्छ देखकर आपका स्वागत करें। आप सभी तालियों से स्वागत करते रहें, तालियां बजाते रहें। कहा जाता है वृक्ष जितना फल फलों से संपन्न होता है उतना ही झुका हुआ होता है। ऐसे ही स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, अटल एवं साहस की धनी, अपने प्रैक्टिकल जीवन से लोगों को प्रेरणा देने वाली महान आत्मा आदरणीय शीलू दीदी जी, आपका परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म 1948 में हुआ। सन 1960 में 12 वर्ष की आयु छोटी उम्र में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आना हुआ। आध्यात्मिकता और आंतरिक जीवन के अनुभवों ने आपकी गहरी रुचि ने राजयोग ध्यान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। आप 1969 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट किया और आध्यात्मिक ज्ञान की अलग जगाने के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया। आपने 1970 से 1976 तक भारत के अलावा विदेश में अफ्रीका, मॉरिशस और कई सेवा केंद्र की स्थापना में आपकी सहभागिता रही है। आप 1976 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान भारत के मुख्यालय पर नियमित रूप से राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान से हजारों लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं। आप जीटीवी, सोनी, आस्था, जागरण चैनल के द्वारा अनेक विषयों पर आपको बोलते हुए आप सभी ने सुना होगा। आप धारा प्रभा, हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी भी बोलती हैं। आप उनमें से एक विशेषज्ञ व्याख्याता भी हैं। आप राजयोग शिक्षा एवं रिसर्च फाउंडेशन शिक्षा विंग के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। आप टेलीविजन पर प्रसारक, सम्मेलन अध्यक्ष, व्याख्याता, ट्रेनर, इंटरप्रेटर और लोकप्रिय वक्ता भी हैं। आप 5 महाद्वीपों पर बड़े पैमाने पर यात्रा भी की हैं। और अंत में आपके लिए कहना चाहूंगी, अनुभव के पन्नों से भरी हुई किताब है आप, सफलता के शिखर पर खिले हुए रूहे गुलाब हैं आप। है कुछ लोग जो संशय करते सफलता पर, उनके हर सवाल का जवाब है आप, उनके हर सवाल का जवाब है आप, आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति। माइंड बॉडी मेडिसिन इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माइंड मेडिसिन को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। और आज उस मेडिटेशन का पहला विषय है सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन अर्थात स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ना, जिसको ही हम योग कहते हैं। लेकिन बड़े खेद से कहना पड़ता है कि आज योग शब्द को हमने बिल्कुल समझा नहीं है, क्योंकि योग के नाम पर योगा कह करके अनेक योगा स्कूल चारों ओर खुले हुए हैं, जिसमें केवल शारीरिक क्रियाएं ही सिखाई जाती है पर मानसिक एक्सरसाइजेस भी हैं, उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। शारीरिक क्रियाओं से हम तंदुरुस्ती अवश्य प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन 80% से भी अधिक शरीर के रोगों का कारण तो मन है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को नाम ही दिया है माइंड बॉडी मेडिसिन, केवल बॉडी मेडिसिन नहीं। तो माइंड को हमें महत्व देना होगा, और अगर 80% शरीर के रोगों का कारण मन है तो मन की एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी होगी। तो शरीर के 80% रोग तो वैसे ही नहीं आएंगे, 20% रोगों का कारण कोई न कोई अन्य होते हैं, पर 80% अगर साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं तो पहले साइको को हमें ठीक करना होगा। इसलिए डॉक्टर्स को यही हमारी दादी जी कहते हैं कि डबल डॉक्टर बनो, केवल शरीर के डॉक्टर नहीं बनो, मन के भी बनो। और उसके लिए सबसे पहला विषय है स्वयं को पहचानो, जिसको ही आज नाम दिया सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात हमारा आध्यात्मिक परिचय। क्या है हमारा आध्यात्मिक परिचय? कौन है योगी? मैं कौन हूं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सदियों से ही खोजा जा रहा है उत्तर के लिए। यहां तक कि एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स होकर के गए हैं, उन्होंने भी यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो या सेल्फ को जानो। तो क्या हूं मैं? वो सेल्फ, स्वयं मैं। इस मैं को जब तक हमने नहीं समझा है तब तक चाहे दुनिया का ज्ञान हमें मिल जाए, हमारी आईक्यू बहुत हाई हो जाए, लेकिन केवल आईक्यू से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए यही अभी मान्यता है कि आईक्यू हाई होने से ही जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए ईक्यू, इमोशनल कोशेंट हमारा हाई होना चाहिए। पर इमोशनल कोशेंट भी हमारा हाई तब होगा, यानी हम अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल तब कर पाएंगे जब हमारा एमक्यू स्ट्रांग होगा, मॉरल कोशेंट स्ट्रांग होगा। और मॉरल कोशेंट अर्थात हमारे अंदर नैतिकता हो, वैल्यूज हो, और वो मॉरल कोशेंट तब हाई होगा जब एसक्यू हाई होगा। एसक्यू अर्थात स्पिरिचुअल कोशेंट। वो स्पिरिचुअल कोशेंट को हाई बनाना बहुत जरूरी है, तब ही हम इस जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि मूल्य, वैल्यूज अगर हमारे जीवन में हैं तो सचमुच हमारा जीवन भी वैल्यूबल है। अगर जीवन से वैल्यूज, मूल्य चले गए तो जीवन का मूल्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए एसक्यू को हाई करना, ऊंचा करना बहुत जरूरी है, और यही मिसिंग लिंक है आज समाज में। चाहे कितने भी हम प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन जब तक हमने ये मिसिंग लिंक जो स्पिरिचुअलिटी की है, आध्यात्मिकता की है, वो नहीं हमने अपने जीवन में जोड़ी है, तब तक हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, सफलता का अर्थ केवल नाम मान शान कमाना नहीं है, सफलता का अर्थ केवल जायदाद जमीन मकान बैंक बैलेंस बढ़ाना ये ही नहीं है, पर सफलता का अर्थ है जब जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, सद्भावना हो, दया हो, रहम हो, सरलता हो, ये सारे सद्गुण हो, तब कहेंगे सचमुच ये जीवन सफल हुआ। और उसके लिए आध्यात्मिक एक बहुत ऊंचा टूल है, वो मिसिंग लिंक है, वो कड़ी है जो हमारे जीवन को एक बहुत सुंदर बैलेंस देती है। और इसी को हम योग कहते हैं। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। योग हमें एक जीवन में इतना सुंदर बैलेंस देता है, जिस बैलेंस के आधार पर कहा जाता है ये जन्म तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म भी हमारे सफल हो जाएंगे, ऐसा सुंदर है ये योग। तो क्या है योग? योग की डेफिनेशन क्या है? अगर हम योग की केवल सिंपल डेफिनेशन लें तो योग संस्कृत से निकला हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलन, संबंध, कनेक्शन, लिंक, जॉइंट, यूनियन, किसी भी प्रकार के जोड़ को, मीटिंग को हम योग कहते हैं। इसका जो अपोजिट है वो समझना और भी सहज है। योग का अपोजिट है वियोग, और वियोग को तो हम भली भांति जानते हैं। वियोग माना बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना, सेपरेशन। तो योग और वियोग ये जीवन के दो अंग हैं। आप जहां से आए, जिस शहर से, जिस घर से, जिस स्थान से यहां आए, तो वहां से वियोग हुआ और यहां से योग हुआ। यहां से आप जाएंगे तो यहां से वियोग होगा, वहां योग होगा। ये तो साधारण बात है, लेकिन हो सकता है कि यहां आने से पहले भी कई दिनों तक आपका योग यहां से था कि ये जो 26 से 29 जनवरी के दिन मैं यहां नहीं होऊंगा, आप अपने क्लिनिक में बता देते होंगे, उन दिनों में मैं माउंट आबू जा रहा हूं, मैं आबू जा रहा हूं। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आया होगा इन तारीखों के बारे में कहने, तो आपने अपना अपॉइंटमेंट डायरी देख के कहा होगा इन दिनों में मैं यहां नहीं रहूंगा। तो कितने दिनों से पहले से ही आपका योग आबू से जुड़ गया था कि नहीं? जुड़ गया होगा जरूर। या यूं कहें कि जब से आपको टिकट मिल गई, चाहे प्लेन की, चाहे ट्रेन की, या जो भी, या कुछ बुकिंग की, तब से आपका योग यहां से जुड़ गया। तो योग का शाब्दिक अर्थ लंबा जोड़ा नहीं है। कोई भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तीन प्रकार का योग है, तीन लेवल्स है। एक लेवल है वस्तुओं का जोड़, दूसरा लेवल है मानसिक योग, मानसिक लेवल का जोड़, और तीसरा लेवल है आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। आप फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इन तीनों को हमें अलग अलग करना होगा। फिजिकल लेवल का योग समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिजिकली हम देखते हैं कितनी चीजें हम एक दो से जोड़ते हैं। आपको आप रेडियो ऑन करते हैं और कोई रेडियो स्टेशन चाहते हैं तो उसमें ट्यूनिंग करते हैं, वही मीटर बैंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जिस पर आपको वो रेडियो स्टेशन आता है उसी को लाने के लिए अपने रेडियो की सुई उसी स्थान पर रखेंगे, तब आपका रेडियो वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा और आप अपने रेडियो पर वो आवाज उस स्टेशन की सुन सकेंगे। अब ये भी योग है, रेडियो स्टेशन से योग। तो जिससे योग हुआ उसका अनुभव होने लगता है। आपने पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ा तो पावर हाउस से आपको बिजली मिलने लगेगी, ये भी एक योग है। दूध में चीनी डाली और मिलाया, दूध मीठा हो गया, ये भी दूध और चीनी का योग है। अर्थात जो चीज आपने मिलाई, जिसमें जोड़ा या जिसके साथ जोड़ा, उसका गुण मिल जाता है, उसकी शक्ति मिल जाती है। अब उस हिसाब से हम देखें, मानसिक रूप से भी जो योग होता है उसमें भी शक्ति मिलती है। उसी अनुसार आप किसी दुखद घटना को याद करते हैं, मान लीजिए अब वो दुखद घटना ऐसी ट्रैजिक थी जो आप भूल ही नहीं पाते हैं, बीच बीच में आपको याद आती रहती है, चाहे वो 20 साल पहले क्यों ना घटी हो, आज भी अगर आप उसको याद करेंगे मन से, जैसे वहां पहुंच गए मन से, और आपको उसी समय जैसे वो दुख महसूस होने लगेगा, जबकि उस घड़ी न वो स्थान है न वो परिस्थिति है न वो व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है, सब बदल गया, लेकिन आज भी उसको याद किया मन से, वो आपको उसी समय वो दृश्य दिखाई देगा। तो मानसिक रीति से आप देखेंगे, चाहे कोई दुखद घटना हो सुखद घटना हो, कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो कोई स्थान हो कोई परिस्थिति हो, जैसे ही मन से वो याद आया या किया आपने, वो अनुभव उसी वक्त होने लगता है, वो पिक्चर आप मन में निकाल लेते हैं, वो सब कॉन्शियसनेस से वो उभर आता है। अब ये भी उस रूप से हम देखें कि मन तो जरूर कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, तो जब हम इसको एक स्पिरिचुअल टच देते हैं, तो स्पिरिचुअल टच का मतलब है कि ये मन परमात्मा में लग जाए, जिसको ही गीता में कहा, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। और जब भगवान ने अर्जुन को कहा ये मन मेरे में लगाओ, तो अर्जुन के अंदर में बहुत शिकायतें थी, ये मन कैसे लगाएं, ये मन तो बहुत चंचल है, मन तो पापी है, मन तो दुष्ट है, मन तो नीच है, घोड़ा है जो बेलगाम होकर दौड़ता रहता है। अब ये मन पापी नीच जो कुछ भी हम इसको एडजेक्टिव्स देते हैं, ये व्यक्ति वस्तु वैभव को याद करने के समय कभी नहीं ये मन के लिए शिकायत करते हैं। कोई ऐसी पत्नी नहीं होगी जो कहेगी मेरा पति में मन नहीं लगता, मन भटकता है, या फलाना मेरा घर वहां मन नहीं लगता, मन भटकता है। लेकिन जब परमात्मा में मन लगाने की बात आती है तब यही शिकायत आती है, मन तो बहुत चंचल है। अगर चंचल है तो सबके लिए चंचल होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु वैभव घटना स्थान परिस्थिति उसके लिए भी चंचल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो हम क्या कहते, क्या करूं मन हटता ही नहीं है, मैं उसको भुला ही नहीं सकता हूं। तो किसको तो आप भुला ही नहीं सकते हैं, और किसके लिए कहते मन लगता ही नहीं है, तो क्या कारण होगा, क्यों नहीं लगता मन जिसमें हम लगाना चाहते हैं, और क्यों नहीं हट सकता है जिससे हम हटाना चाहते हैं? अब जरूर कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण मन ईश्वर में क्यों नहीं लगता, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये हम जानेंगे और देखेंगे कैसे मन इतना सहज लग जाएगा परमात्मा में, जो आप हर कर्म करते हुए भी मन को इस परमात्मा में लगा सकेंगे। इसीलिए राजयोग ये सबसे ऊंचा योग है जिसमें मन ईश्वर से लग जाता है, ये आध्यात्मिक स्तर का योग है। और जब हम इस मन को परमात्मा में लगाते हैं, कैसे हम राजा बन जाते हैं, पहले अपने इंद्रियों के राजा, आज इंद्रियां भी हमारी राजा बन गई है, जहां इंद्रियां हमें खींच मन को खींच के ले जाती, मन वहीं चला जाता है। लेकिन योग द्वारा हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख सकेंगे, मन को इतना ऊंच करके। आज मान लीजिए कई शारीरिक योगासन करते हैं, कोई शीर्षासन करता है, सिर नीचे पैर ऊपर, लेकिन योग हमें असल रूप में सिखाता है कि सिर पर बैलेंस अगर कोई नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं वो योगी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिर पर बैलेंस करने की बजाय उनसे ऊंचा योग है सिर का बैलेंस, नॉट बैलेंस ऑन हेड बट बैलेंस ऑफ हेड, अंतर हो गया ना दोनों में, बैलेंस ऑफ हेड, मन का संतुलन। और जब मन का संतुलन है तो इंद्रियां भी हमारे वश में होगी, तो इंद्रियों को का राजा बनना, फिर मन का भी राजा बनना, मन से क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है वो भी हमारे वश में हो। जैसे गाड़ी हमारे वश में है, हमारे एक्सेलरेटर ब्रेक सब हमारे कंट्रोल में है, तो गाड़ी चलाना तो खेल है, इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ गेम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तब हो जब कब स्टॉप करना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, अगर हम भूल जाएं और एक्सेलरेटर की बजाय ब्रेक दबाते रहें और ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दें तो क्या हालत होगी। इसलिए अगर मन हमारे वश में है तो इंद्रियां तो वश में है ही, तो क्या सोचे क्या न सोचे वो भी हम उसके भी मालिक बन सके, मन के भी मालिक बन सके, जो नहीं सोचना एक सेकंड में ब्रेक लगा सके, और जो सोचना है वही सोचे, ये नहीं कि जो नहीं सोचना है वही सोच मन में चल रहा है और जो सोचना है वो तो चलता ही नहीं है। इसलिए मन के भी राजा, और जब इंद्रियों के राजा मन के राजा बन सकेंगे तब जीवन में वैल्यूज आएगी, और जब जीवन में वैल्यूज आएगी तब आप दिलों के भी राजा बन सकेंगे। कोई भी व्यक्ति हथियारों के बल से विश्व को नहीं जीत सका है, लेकिन दिलों को जीतने से आप सारे विश्व को जीत सकते हो, और ऐसा जीत सकते हो जिसके लिए कहा गया है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी स्त्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाए। आज मानव दानव बन गया है, ये नहीं कहते जानवर बन गया, जानवर भी अच्छे हैं हमारे से, मानव दानव बन गया है, परंतु यही मानव देव था और फिर से बन सकता है। देव ही था जिससे दानव बना, अब फिर से देव बन सकता है, और राजयोग के माध्यम से हम मानव से देव बन सकते हैं, क्योंकि राजयोग अर्थात उस ऊंचे से ऊंचे सर्वोपरि सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से मन की तार जोड़ते हैं और जो उसकी विधि है वो भी बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची है, क्योंकि कई तरीके लोग समझते हैं ईश्वर से जुड़ने के। कई समझते पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, हवन करते, तीर्थ करते, यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। भक्ति में अलग अलग धर्मों में अलग अलग वैरायटीज है मन को ईश्वर में लगाने के, लेकिन सर्वोच्च विधि किसको कहेंगे? अब माउंट आबू अब हमें जाना है तो कई रास्ते हैं माउंट आबू जाने के। पहले जो अभी रोड है वो नहीं था, हजारों साल पहले कई तरीकों से माउंट आबू आना होता था। फिर जब से रोड बन गया तो कौन पहाड़ों पहाड़ चढ़कर के माउंट आबू आएंगे, इतना सरल हो। तो तरीके अनेक हैं। कई समझते परमात्मा तो एक चोटी की तरह है, उस चोटी तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन आज का जमाना जो शॉर्टकट्स का जमाना है, समय नहीं है, नो टाइम, तो सबसे शॉर्टकट, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम वो विधि राजयोग की है। तो वो विधि आपको बताएंगे। और तीसरी बात, प्राप्ति भी सबसे ऊंची, मेहनत भी लगे और प्राप्ति भी इतनी न हो तो वो तो आप नहीं चाहेंगे। तो प्राप्ति भी सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे? जो शुरू में आपको बताया, जीवन में मूल्यों की प्राप्ति, शांति, प्रेम, सुख, ये सारे जो मूल्य है जीवन के, वो अगर हमें प्राप्त हो जाए वही सच्ची सफलता है। तो यही सबसे ऊंची प्राप्ति है। कई कहते केवल यही कैसे चलेगा, हम कहते हैं देखिए अपने आप से पूछिए। कई बार हम लोगों से पूछते हैं आप जीवन से संतुष्ट हो? आपको तो सब कुछ है, क्या कमी है आपके जीवन में? कुछ भी कमी नहीं है। तो संतुष्ट हो तो फिर भी यही उत्तर आता है, बहन जी सब कुछ है लेकिन बस शांति चाहिए। शांति चाहिए, सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। तो सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? जिसको पाने के बाद और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, वो है जीवन के मूल्य। और वो प्राप्ति परमात्मा हमें अनुभव कराते हैं, क्योंकि परमात्मा तो इन मूल्यों का सागर है। तो उससे जब मन की तार जुड़ जाती है तो वही तो हमें प्राप्त होंगे। इसलिए योग क्या है, राजयोग क्या है, कैसे उन्हें उनसे हमें सब प्राप्तियां होती है, वो आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। परखने की शक्ति आती है, निर्णय शक्ति आती है, व्यवहार में शुद्धि आती है, व्यक्तित्व का निखार होता है, मनोबल में वृद्धि होती है, शांति की प्राप्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, संबंधों में सुधार और आनंद की प्राप्ति। सच्चा आनंद वही है। केवल इंद्रियों का आनंद कोई सबसे ऊंचा आनंद नहीं है। नाच गाने तमाशे शराब जुआ, ये इंद्रियों का आनंद है, लेकिन उसके बाद कैसे जीवन में फिर से निराशा आती है। पर वो अगर सच्चा आनंद मिल गया जिसके नाम पर कई हमारे संतों के नाम है, सच्चिदानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, सत्यानंद, विवेकानंद, ये सब आनंद से जुड़े हुए हैं, शांतानंद, जो शांति से आनंद मिला, जो प्रेम से आनंद मिला, जो सत्यता से आनंद मिला, और सबसे ऊंचा आनंद परमानंद। परमानंद उस परमात्मा से मिलन मनाने से आनंद, और उस आनंद की भेंट में बाकी सारी इंद्रियों के आनंद फीके हैं। इसलिए वो हम कैसे अनुभव करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि राजयोग क्या है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसको ही अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन. अंटिल वी अंडरस्टैंड द सेल्फ वी कैनॉट रियलाइज गॉड. तो सेल्फ को समझना बहुत जरूरी है. मैं कौन हूं, ये इतना बड़ा प्रश्न है जो सदियों से चल रहा है. इसका उत्तर राजयोग देता है. तो स्वयं की पहचान न होने के कारण मन परमात्मा में नहीं लगता. तो जब स्वयं की पहचान हमें मिल जाती है तब मन परमात्मा में लगने लगता है. फिर उसके बाद परमात्मा कौन है उसकी भी पहचान चाहिए, क्योंकि जिसमें मन लगाना है उसकी भी पहचान चाहिए. फिर उसके बाद भी तीसरी समस्या आ सकती है. जैसे आपका मोबाइल ठीक है, आप जिसको आप फोन करना चाहते हैं उसका भी मोबाइल ठीक है और आपका कॉन्वर्सेशन हो भी रहा है और अचानक बंद हो गया. आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक बंद हो गया, कहेंगे भैया टावर नहीं है, जो बीच में कनेक्ट करता है वो टावर नहीं है. अब टावर ही नहीं है तो कॉन्वर्सेशन रुक गई. तो आत्मा और परमात्मा का मिलन तो होगा जब खुद को पहचानेंगे और परमात्मा को पहचानेंगे. लेकिन एक तीसरा कारण भी है जो मन को ईश्वर में नहीं लगाने देता, और वो है मन का मैलापन. मन में अनेक विकृतियां भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट, सारे ये विकृतियां जो मन की ही विकृतियां गाई गई है, जो मनोबल को कम करती है. अब यही विकृतियां हमें निकालनी होगी, मन को स्वच्छ बनाना होगा, क्योंकि परमात्मा को मन में स्थान देने के लिए मन रूपी पात्र कितना शुद्ध होना चाहिए. एक दूध को रखने लिए बर्तन को कितना साफ करते हैं, बिना बर्तन साफ किए ऐसे दूध कभी नहीं रखेंगे. अगर खटाई वाला बर्तन होगा तो फट जाएगा दूध, मैला होगा तो दूध पीने योग्य नहीं होगा. इसलिए मन की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, और वो स्वच्छता उसकी विधि हमें राजयोग देता है. तो इसलिए परमात्मा को अगर हम पहचाने, खुद को पहचाने और उसके लिए मन को स्वच्छ करें, वो अनुभव करने के लिए ये राजयोग ज्ञान योग है. ज्ञान, कौन सा ज्ञान? दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान जो हम भगवान से मांगते हैं. जब प्रार्थना करते यही कहते हैं, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय. हमें वो ज्ञान दो जो असत्य से हमें दूर सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु के भय से निकाल अमृतत्व का अनुभव कराए. वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान जो स्वयं परमात्मा हमें देते हैं. तो वो भी आप यहां सुन रहे हैं. और फिर जब ये ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो फिर दूसरा कदम है बुद्धि योग. हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ बन जाती है जो सद्बुद्धि बन जाती है. और ये भी बुद्धि भी हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान सद्बुद्धि दो, सही और गलत की पहचान दो, अच्छे बुरे की समझ दो. हम ये भगवान से ही मांगते हैं. तो ये ज्ञान योग भी है, बुद्धि योग भी है, सहज योग भी है. इसमें शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, मन की एक्सरसाइज है. जैसे पद्मासन हम करते हैं तो पद्म आसन सभी नहीं कर सकते हैं. कईयों को घुटने में प्रॉब्लम होगी, पद्मासन कैसे करेंगे? आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म में कैसे पद्मासन करेंगे? जॉइंट पेन्स है. तो पदम आसन आप भले न कर सको, लेकिन पदम जैसा जीवन तो जी सकते हो। पदम जैसा जीवन, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अलिप्त रहता है, अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो वो जीवन, वही कमल प्रभु को अर्पित होता है। उतना ही हिस्सा विष्णु के हाथ में दिखाया कमल का, जो कीचड़ से ऊपर है, बाकी पूरा परिवार है कि कमल का, वो नहीं विष्णु के हाथ में दिखाया है, उतना ही अर्पित होता है जो कीचड़ के ऊपर है। तो प्रभु को हम अपना जीवन भी अर्पित कर सके, इसलिए कमल सदृश जीवन जिए, भले पद्मासन न भी करना आए। इसलिए राजयोग क्या है? ये ज्ञान योग है, ये सहज योग है, ये बुद्धि योग है, ये कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ ये नहीं है केवल कर्म से योग, नहीं, कर्म तो हाथों का काम है, योग तो परमात्मा से चाहिए। कर्म हाथों से करें और मन बुद्धि परमात्मा की तरफ हो। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर्स के आगे जब कोई पेशेंट आता है, बहुत सीरियस है, तो डॉक्टर से उनके रिश्तेदार पूछते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, ऑपरेशन करना होता है, ठीक हो जाएगा ना? तो डॉक्टर उनको क्या सलाह देता है? आई ओनली ट्रीट, गॉड क्योर्स, हैंड्स ओनली ट्रीट, आई कैन ओनली ट्रीट, बट क्योर ये तो भगवान के हाथ में है। इसलिए आप भगवान को याद करो, रिलेटिव्स को कहेंगे आप परमात्मा को याद करो, पर खुद को नहीं कहेंगे कि परमात्मा को याद करो, खाली रिलेटिव्स ही परमात्मा को याद करें। तो आपके भी हाथ ट्रीट करें और मन बुद्धि परमात्मा की तरफ हो, तो कैसे उसी उन्हीं हाथों में वो ताकत आएगी, आप वो वाइब्रेशन भी उनको दे सकेंगे जिनसे वो सहज उनको क्योर भी मिल सकेगा। इसीलिए कर्म योग माना कर्म हाथों से करो, मन बुद्धि परमात्मा में रहे, और मन बुद्धि जब परमात्मा में है तो परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त होगी, जिस शक्ति से विघ्न खत्म हो जाएंगे, समस्याएं खत्म हो जाएगी, और कैसे हमारा मार्ग सरल होता जाएगा। इसलिए ये कर्म योग है, साथ साथ इसको हम भक्ति योग भी कहते हैं। भक्ति का मतलब पूजा पाठ कर्म कांड नहीं, भक्ति का अर्थ है परमात्मा से सच्चा प्रेम, वो सच्चा प्रेम हो ईश्वर के साथ, तब मन बुद्धि उस परमात्मा में लग सके। और फिर साथ में सन्यास योग, अर्थात घर गृहस्थी का सन्यास नहीं, जिम्मेदारियों का सन्यास नहीं। भगवान ने कभी नहीं सिखाया कि जिम्मेदारियां छोड़कर जंगल में चले जाओ, ये भगवान नहीं सिखाता है। परमात्मा तो कहते कर्म भी करो, पर कर्म के फल की चिंता मत करो, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म करना ये आपके हाथ में है, फल मुझ पर छोड़ दो, आप चिंता मत करो। यही तो आप अपने रिश्ते उनके पेशेंट के रिश्तेदारों को कहते हैं, भगवान को याद करो, वही क्योर करेगा। इसलिए ये कर्म योग अर्थात, और फिर सन्यास योग, बुराइयों का सन्यास, भक्ति योग परमात्मा से प्रेम, और फिर ये बहुत सुंदर योग है समत्व योग, योग ऑफ बैलेंस, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान, ये ऐसा सुंदर बैलेंस जीवन में आ जाता है जो हर वक्त हम महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवन को धन्य बना दिया। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? कई कहते हैं बहन जी ये तो जब बुढ़ापे में आएंगे ना तब ये बातें सोचेंगे, अभी तो जवानी है, खाओ पियो मौज करो, अभी तो धन कमाना है, यश कमाना है, मान कमाना है, ये सब बुढ़ापे में हम करेंगे। वास्तव में ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये जीवन का एक सार है, और ये हर एक कर सकता है, ये भी नहीं कि ये धर्म वाले करेंगे ये धर्म वाले नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं है। जीवन तो सब जी रहे हैं ना, श्वास तो सब ले रहे हैं ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये योग है, क्योंकि अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा की आवाज या इनर वॉइस, वो आपको हर वक्त गाइड करता है, लेकिन आप उसे दबाते हैं। अगर उसे दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे अपनी आत्मा का घात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है और वो सलाह आपको पसंद नहीं है। कई बार हम देखते हैं बेटे को माँ सलाह देती है, बेटा ये नहीं करो, बेटा ये नहीं करो, बेटा नहीं करो, बेटे को गुस्सा आता है और बंदूक लेके माँ को ही मार डालता है, वो आवाज ही बंद कर देता है, ये क्यों मुझे कहती है। तो जैसे अपनी आत्मा का घात करते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनते नहीं है, और परिणाम स्वरूप यही आत्महत्या है, कोई और आत्महत्या नहीं होती, वो तो शरीर तो ऐसे ही विनाशी है। तो कैसे हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, उसके लिए खुद को पहचाने, मैं कौन हूं। तो कौन है योगी, कौन है साधक, एक है साधक और दूसरा है साधन। आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, बहुत बड़ी सर्जरी आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स आप क्या सर्जरी करेंगे, यू नीड इंस्ट्रूमेंट्स। तो दो चीजें हैं, साधक और साधन। अब दोनों के अंतर को समझना होगा, और उस अंतर को आपने समझ लिया तो खुद को पहचान लेंगे। जब हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य का मतलब केवल ये शरीर नहीं है, मनुष्य का मतलब केवल ये हड्डी मांस नहीं है, मनुष्य माना भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, विचार हैं, अनुभव हैं, ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर को समझना मुश्किल नहीं है, पर सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हार्डवेयर से भी ज्यादा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, वो बहुत कमाते हैं। सॉफ्टवेयर, नया नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नई नई वेबसाइट्स बनाते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो हार्डवेयर पार्ट है वो आप नहीं है। हार्डवेयर पार्ट क्या है, व्हाट यू ईट, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू डू, ये सब हार्ड पार्ट है। पर सॉफ्ट पार्ट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू विजुअलाइज, व्हाट यू एक्सपीरियंस, ये सॉफ्ट पार्ट है। तो मैं वो नहीं हूं जो मैं खाती हूं, आई एम नॉट व्हाट आई ईट, आई एम नॉट व्हाट आई वेयर, आई एम नॉट व्हाट आई डू, बट आई एम दैट व्हाट आई थिंक, व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्सपीरियंस, व्हाट आई विजुअलाइज, बिकॉज व्हाट यू थिंक दैट यू विल बिकम, वही अनुभव करेंगे। इसीलिए मैं कौन हूं, इस शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति हूं। ऐसे नहीं है कि मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, नहीं, मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, ये ऐसे कहना जैसे गाड़ी कहे कि मैं तो गाड़ी हूं, मेरे अंदर ड्राइवर है। अब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पर गाड़ी तो नहीं कहेगी ना मेरे अंदर ड्राइवर है, ये ड्राइवर कहेगा कि मैं गाड़ी को चलाता हूं। तो मैं कौन हूं, इस शरीर के अंदर विराजमान एक चैतन्य सत्ता, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो शरीर से पहले भी थी, जो शरीर के बाद भी रहेगी। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये तो मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्वों से आया है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान के घर से आई है, भगवान के पास जाएगी। बच्चा पैदा होता है, क्या कहते हैं, भगवान ने दिया। अब किसने दिया बच्चा, वो तो माँ बाप के बीज की रचना है, पर भगवान ने क्या दिया, भगवान ने शरीर ने दिया, वो तो प्रकृति ने दिया, पर भगवान ने क्या दिया? आत्मा दी। और आत्मा के लिए कहा जाता है, जब किसकी मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। ये नहीं कहते शरीर को शांति देना, शरीर को तो मिल गई शांति, मृत्यु माना ही शरीर को शांति। जब किसी की मृत्यु होती है यही कहते देह शांत हो गया, तो देह शांत होना मना मृत्यु, पर फिर भी आत्मा की शांति की कामना भगवान से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का संबंध परमात्मा से नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है, शरीर तो एक साधन है, शरीर तो एक रथ है। तो क्या है शरीर और क्या है आत्मा, कितना अंतर है। शरीर गाड़ी है और मैं आत्मा उसका ड्राइवर हूं। शरीर तो डिब्बी है, आत्मा उसमें हीरा है। शरीर तो एक झोपड़ी है और आत्मा उसमें दीपक है। शरीर मंदिर जरूर है और आत्मा उसमें मूर्ति है। शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है। शरीर वस्त्र है और आत्मा इस वस्त्र को धारण करने वाला एक अभिनेता है, जो सृष्टि रूपी रंग मंच पर अभिनय कर रहा है, भिन्न भिन्न वस्त्र धारण कर रहा है। इसलिए मैं कौन हूं ये परिचय देना बहुत जरूरी है। एक एक्टर हर फिल्म में अलग अलग एक्टिंग करता है, लेकिन एक्टिंग करना, अभिनेता बनकर के अलग अलग रोल बजाना एक अलग चीज है, पर उस अभिनेता का की जो आइडेंटिटी है वो तो बदलेगी नहीं ना। रोल तो बदलते रहते हैं। आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कितने रोल बजाते होंगे, भले अपने डिस्पेंसरी में, अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में आप डॉक्टर का रोल, सर्जन का रोल बजा रहे हैं, पर हो सकता है घर के अंदर आज आपका सर्वेंट नहीं आया तो शायद सफाई भी आपको करनी पड़े, अपनी पत्नी के साथ मना भोजन भी बनाना पड़े, तो क्या आप कुक बन गए क्या? आप भले प्रोफेशन आपका है, पर उस समय तो आप कुक भी बन गए। आप उस समय सफाई कर रहे, गार्डनिंग कर रहे, तो गार्डनर भी बन गए। कितने रोल बजाते हैं। तो रोल बजाना अलग चीज है, पर आइडेंटिटी अलग चीज है। एक्टर रोल बजाते हैं पर फिर भी उसकी आइडेंटिटी तो उस ओरिजिनल तो कुछ और ही है, वो तो फिक्स है। इसी प्रकार शरीर माना अलग अलग रोल्स, पर आत्मा माना आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी समझना माना अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझना। आध्यात्मिक स्वरूप जो अविनाशी है, आध्यात्मिक स्वरूप जो अनादि है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, ये केवल शरीर धारण किया तो जन्म का, शरीर त्याग किया तो मृत्यु का। आत्मा का न जन्म न मृत्यु, इसीलिए आत्मा के लिए कहा जाता है कि न जल सकती, न कट सकती, न सूख सकती, न गीली हो सकती, क्योंकि आत्मा पर प्रकृति का बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर तो बाह्य प्रभाव पड़ता है, तो जो जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, सूख नहीं सकती, गीली नहीं हो सकती, यानी प्रकृति के स्पर्श से बाह्य स्थिति आत्मा की बदलती नहीं है। पर आत्मा है क्या चीज, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो भी तो समझना है। तो कई समझते ठीक है आत्मा है तो मेरे अंदर एक आत्मा है, बस ऐसे ही कह देंगे मेरे अंदर आत्मा है। फिर कोई कह देंगे कि हाँ मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब वास्तव में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मेरे अंदर एक आत्मा है माना मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है, पर ये बोलने वाला कौन, मेरे अंदर आत्मा है? शरीर तो बोलेगा नहीं, आत्मा निकल गई तो शरीर थोड़ी कहेगा अभी मेरे अंदर आत्मा नहीं है। और फिर कहना मेरे शरीर में मेरी आत्मा माना दोनों ही मेरा हो गया, शरीर भी और आत्मा भी, तो फिर मैं कौन? और तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं, तो सही वाक्य कौन सा होगा, कौन सा होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। मेरे शरीर में, शरीर जरूर मेरा है लेकिन मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा क्या चीज है? इट इज नॉट फिजिकल। आत्मा का अस्तित्व कहां है शरीर में? इट इज मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल को हमें समझना होगा और वो समझ केवल परमात्मा ही हमें देते हैं। तो मेटाफिजिकल माना समथिंग विच इज नॉट फिजिकल, अबव फिजिकल, जिसको ही हम सूक्ष्म कहते हैं, जिसको ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो सोचने की शक्ति जिसको या मन कहते हैं, समझने की शक्ति जिसको बुद्धि कहते हैं, फिर कर्म करने की शक्ति जिसको हम संस्कार कहते हैं, ये शक्ति इस एनर्जी इसी को हम आत्मा कहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन आत्मा की चेतनता का स्वरूप है, ये फिजिकल नहीं है। मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? आत्मा चली गई। फिर कहेंगे अपना कर्म अपने साथ ले गई। तो कर्म कैसे गए? कर्म तो मोटा रूप है जो शरीर से किया, लेकिन वो कर्म आत्मा संस्कार के रूप में ले गई। इसीलिए किसी को पाप आत्मा, किसको पुण्य आत्मा, किसको धर्म आत्मा, किसको महात्मा, किसको देव आत्मा आदि नामों से हम पुकारते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की चेतनता है और ये ब्रेन का भी अस्तित्व नहीं है। कई न्यूरोसर्जन्स ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, ट्यूमर्स निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी ब्रेन सर्जन ने आज तक नहीं बताया कि मन कहाँ है, किस हिस्से में मन है, क्योंकि मन फिजिकल नहीं है, कोई ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। तो क्या है ये मन? मन सोचने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, कल्पना करना, भावनाएं लाना, ये सब मन का काम है। और मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे बहुत ही कम पहचाना गया है। और अगर मन की ऊर्जा को हम समझ लेंगे, उन्हें दिशा देंगे, तो हम जीवन की का संचालन हम कर सकेंगे। जैसे हम फिजिकल एनर्जीज देखते हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हम उनको टैप करते हैं, हम उनको कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और उसके आधार से कितनी बिजली तैयार होती है, वाटर की, पानी की एनर्जी है, ये सब पंच तत्वों की जैसी एनर्जी से हम शक्ति पैदा करते हैं इन तत्वों से। तो मन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और अगर हम उसको प्रिजर्व कर सके और उसको सही दिशा दे सके, तो ये मन हमें विश्व को भी जीतने का एक साधन बना देगा। इसलिए कहा जाता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। अगर मन को आपने जीत लिया तो जगत को भी जीत सकते हो। पर मन को जीतने का मतलब ये नहीं मन को मारना, मारने की बात नहीं है। मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है जिसको मारो तो गुड रिडेंस टू बैड रविश, खत्म कर दो। मन तो हमारा मित्र है, ये मन ही तो हमें ईश्वर तरफ ले जाएगा। तो मन को कैसे हम मित्र बना करके उनको हम श्रेष्ठ चिंतन दें, ये जरूर राजयोग सिखाता है। तो श्रेष्ठ चिंतन मन को देने के लिए मन से ऊंची शक्ति है बुद्धि। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का। तो बुद्धि की कंपैरिजन हम एक सीव के साथ करते हैं, छलनी, छनी होती है, हम चाय छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय पीने योग्य जो है वो कप में आ जाती है। तो छन्नी का क्या काम करती है? जो बेकार चीज है, जो काम की नहीं है, वो रह गई और काम की चीज कप में आ गई, वो सेपरेट करती है अच्छे और बुरे को। हाँ, जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो अलग करेगी। तो बुद्धि भी ये सेपरेशन का काम करती है, जो अच्छा है वो एक्सेप्ट करेगी और जो बुरा है उसको रिजेक्ट करेगी। इसलिए कई बार हम कहते हैं हाँ आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वो बुरे को रिजेक्ट करती है। तो आत्मा की आवाज माना बुद्धि की आवाज, सोच समझ कर कर्म करो। लेकिन कई बार हम इतने ईगो में आ जाते हैं, इतना अभिमान आ जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, ईर्ष्या के वश हो जाते हैं, जो सोच समझ कर कर्म करने की बजाय रिवर्स चलता इक्वेशन, एक्सटेम्पो कर लिया बिना सोचे समझे, इसका क्या नतीजा हो सकता है सोचते भी नहीं है, कर लिया ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश, क्रोध के वश, अभिमान के वश, और करने के बाद समझ आई ये गलत था, करने के बाद और समझने के बाद फिर सोचते अभी क्या करें, समझ करने के बाद आई और सोच उसके बाद आया कि अभी क्या करें, अभी क्या करें ये पहले सोचना है, फिर समझना है कि यथार्थ है गलत है सही है, क्या इसका नतीजा होगा, फिर करना है। तो राजयोग हमें वो सही विधि बताता है। मन के द्वारा पहले सोचना होता है, कई संकल्प आते हैं मन में लेकिन सारे संकल्प तो कर्म में नहीं लाने होते हैं, फिर बुद्धि उनको निर्णय देती है। इसलिए बुद्धि की तुलना हम एक तराजू से भी करते हैं। तराजू में तीन चीजें होती है, एक तो कांटा होता है, दूसरी डंडी होती है, तीसरे पलड़े होते हैं। तो कांटा माना ये मन की स्थिति है, मन ईश्वर में लगे, मन अगर परमात्मा में एकाग्र है तो बुद्धि की जो समतल डंडी है वो हमें बैलेंस सिखाती है कि मान अपमान निंदा स्तुति में आप समान रहो, मान की इच्छा मत करो, अपमान से भी दुखी मत हो जाओ, तो समतल हो, अनबायस्ड, अनबायस्ड रहना बहुत जरूरी है, पक्षपात रहित। आज जजों पर भी कितनी उंगली उठती है कि ये पक्षपात करते हैं। जज माना भगवान की कुर्सी पर बैठने वाला, जो भगवान की कुर्सी पर बैठता है वो पूरा न्याय देता है। तो बुद्धि न्याय देती है, निर्णय करती है, और क्या निर्णय करती है, किसको महत्व देती है, तराजू किसको महत्व देता है, वजन को। तो बुद्धि की तराजू है या वजन है उसके मूल्य, जीवन के मूल्य, और यही मूल्य अंतरात्मा की आवाज है। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्य है, और उन मूल्यों पर अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। और जहां ये बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी वहां ही हमारे कर्म ऊंचे होंगे, और वही कर्म हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनाएंगे। तो संस्कार क्या है, जो आत्मा ने रिपीटेडली कर्म किए वो कर्म संस्कार के रूप में, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, वो आत्मा के अंदर ही निहित हो जाते हैं, और यही आत्मा अपने साथ ले जाती है उन कर्मों को, और उस अनुसार फिर जन्म लेती है। अब इन तीन चीजों को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि सचमुच आत्मा के एग्जिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। कई छोटे छोटे बच्चे इतनी बचपन की स्थिति में कितने टैलेंटेड बन जाते हैं, कहां से वो टैलेंट्स आए उनको, वो पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म के। और कई बार हम ये भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते ये कैसे हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, पेशेंट डेड, बिल्कुल डेड, क्लिनिकली डेड, लेकिन अचानक जिंदा हो गया ऑपरेशन टेबल पर, सब बंद हो गया, फिर अचानक कैसे जिंदा हो गया, और वो अपना अनुभव सुनाता है, मैं ऊपर से देख रहा था, बॉडी को भी देख रहा था, कौन देख रहा था, डॉक्टर्स आपस में क्या बात करे वो भी सुन रहा था, अपने रिलेटिव से भी वो मिलकर के आया, और शरीर वही मृतक पड़ा है। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये सब आत्मा की अनुभूति है। और तीसरी जो आजकल मेडिकल साइंस में भी यूज होता है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आधार से कितने ऐसे रोग मिटा देते जो साइकेट्रिक है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर निहित है और उसको कैसे डिलीट कर लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके। अब ये सब सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व है, पर कहाँ है शरीर में, जहां पर स्त्रियां तिलक लगाती है, ये सरफेस मार्किंग है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं आत्मा का, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, ये वास्तव में आत्मा का सरफेस मार्किंग है। तो ब्रेन के अंदर, क्योंकि आत्मा इस शरीर का संचालन करती है, ब्रेन संचालक है, पर ब्रेन अपने आप में संचालक नहीं है। ब्रेन एक कंप्यूटर जरूर है, लेकिन उस ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो आत्मा है। और उस आत्मा को पहचानना माना खुद को पहचानना, कि मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूं, इस देह की इंद्रियों का मालिक हूं। और जैसे मैंने ये अपने आप को निश्चय किया तो महसूस होता है कि मैं आत्मा अनेक मूल्यों वाली हूं। हम जिन मूल्यों की बातें करते हैं वो मूल्य हमारे से अलग नहीं है। मैं आत्मा ही ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा ही पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। ये आत्मा के 7 कोर वैल्यूज हैं जो आत्मा में सदा निहित हैं। इन वैल्यूज को हमें बाहर से नहीं लेने हैं। कई समझते हम फलानी जगह जाएंगी वहां शांति मिलेगी, वहां जाएंगे वहां प्रेम मिलेगा, वहां जाएंगे खुशी मिलेगी, वहां जाएंगे आनंद मिलेगा। जी नहीं, कहीं भी जाने से, किसी से मिलने से ये सब नहीं होता है, कोई चीज पाने से ये सब नहीं होता है, ये आपकी आत्मा में ही निहित है। अगर कहीं जाने से, किससे मिलने से, कोई चीज पाने से मिलता तो फिर हम भटकते क्यों है वो मिलने के बाद भी, लेकिन फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, देयर इज नो एंड। वास्तव में जो भौतिक प्राप्तियां हैं ये तो सब आपकी परछाई की तरह है। आप जितना उनके पीछे पड़ेंगे ना, वो परछाई आपकी लंबी लंबी होती जाएगी और आप उनसे जैसे दूर ही हैं सदा, और रोशनी से भी दूर जा रहे हैं। लेकिन आपने परछाई को पीठ दी और रोशनी की तरफ गए तो आपकी परछाई आपकी छोटी छोटी होती जाएगी, और जैसे रोशनी के पास आएंगे परछाई छिप जाएगी, वो आपसे अलग नहीं है। तो इन गुणों के पीछे जाते हैं वस्तुओं को पाने के लिए, जाते हैं गुणों के पीछे ही हैं। वहां जाऊंगा शांति मिलेगी, वहां जाऊंगा प्यार मिलेगा, वहां जाऊंगा खुशी मिलेगी, जाते हैं इन गुणों के पीछे। और इन गुणों को भूल करके वस्तु व्यक्ति वैभव स्थान परिस्थिति में फंस जाते हैं, फिर और चाहिए और चाहिए, तो मन तो भटकता ही रहता है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पहले अपने अंदर में झांकते हैं, अंदर में महसूस करते हैं कि मैं वास्तव में इन गुणों के स्वरूप हूं, मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं ही आत्मा हूं जो शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, इन सब गुणों की मैं स्वरूप हूं। ये 7 कोर वैल्यूज हैं। जैसे हम 7 रंग देखते हैं, 7 कोर कलर्स, जिससे दुनिया के सारे रंग बने हैं। विबग्योर हम बचपन में पढ़ते थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं। और उस के मिश्रण से ही दूसरे कलर्स बनते हैं। सात सुर हैं, सारे ग म प द नी, बस इनसे सारा म्यूजिक वर्ल्ड है। सात दिन है, सात दिन का जीवन माना जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस इसके अलावा आठवां दिन आता नहीं है। तो सात दिन का जीवन है। इसी प्रकार इन सात गुणों में सारे जीवन के गुण हैं, वैल्यूज हैं, और ये आपके पास ही है, ये आत्मा में है, ये शरीर में नहीं है। अगर शरीर में इनको ढूंढेंगे ना, ये विकार बन जाते हैं। अब ये एक अलग विषय है। और आत्मा में ढूंढना नहीं है, उनको अनुभव करना है। और कैसे करना है? चिंतन से। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। इफ यू थिंक यू आर पीसलेस, देन नो वन इन द वर्ल्ड कैन मेक यू पीसफुल, नॉट इवन गॉड, लेट मी टेल यू। एंड इफ यू थिंक यू आर अ पीसफुल सोल, नो वन इन द वर्ल्ड कैन मेक यू पीसलेस। इसीलिए हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये महसूस करो तो शांति के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक कछुआ कैसे अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, और सिकोड़ करके बिल्कुल उनके अंदर जो कुछ उनका जो ऑर्गन्स है वो बहुत स्लो मूवमेंट में है। इसलिए कछुए की जो उम्र है वो 500 साल तक भी चल सकती है। नो वन कैन लिव दैट लॉन्ग। लेकिन टॉर्टोइस कैन लिव इवन 500 इयर्स, क्योंकि उनका जो भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए इतनी लंबी आयु जी सकता है। कुत्ते की आयु, ये सब बहुत छोटी छोटी कम आयु है, क्योंकि वेरी हाई मेटाबॉलिज्म। तो शरीर को हम जितना ही बहुत ज्यादा करते उतनी आयु कम होती जाती है। जितना क्रोध को हम बढ़ाएंगे, ईर्ष्या को बढ़ाएंगे, आयु कम होती जाएगी। काम वासना के वश होंगे, आध्यात्मिक शक्ति भी जाएगी, मानसिक शारीरिक सब शक्तियां जाएगी। और जितना इनको कंजर्व करते हैं उतनी आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति भी बढ़ती है, मनुष्य की आयु लंबी होती है। तो हमें यही सिखाया जाता है, कछुए समान अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो और खुद को आत्मा समझो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा, और इन सब गुणों की मैं स्वरूप हूं। तो जैसे कछुए का इतना महत्व है, शिव के मंदिरों में आप देखेंगे कछुआ, और फिर पक्षी, पक्षी पक्षी की तरह उड़ो। कोई परिस्थिति आपके सामने आए, लेट गो, आप उड़ जाओ, उनसे न्यारे हो जाओ। जैसे पंछी डरता नहीं है, वो दाना चुगने आता है, लेकिन जब देखता है कोई ऐसा जानवर आए उड़ जाएगा, वो वहीं खड़ा नहीं रहेगा, तो उड़ जाएगा, वो जानवर नहीं उड़ सकता उसके पीछे। तो कोई भी परिस्थिति आए आप मन और बुद्धि से उड़ जाओ। पांच तत्वों से भी पार जहां आत्मा का निवास स्थान है, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, आप वहां उड़ सकते हो। तो अंदर चले जाओ या उड़ जाओ। अंदर जाना माना अपने आप को पहचानना। ये ओम शब्द में बहुत शक्ति समाई हुई है, बहुत इसका महत्व है। लेकिन ओम का जो लिटरल अर्थ है वो बहुत सिंपल है। तीन अक्षर से बना है ओम, अ उ और म। अ उ म माना दैट इज मी, वह हूं मैं, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैं वही हूं, कौन? आत्मा, शांति, जिसका मूल स्वभाव शांति है। तो जैसे हम अपने आप में अपने आप को पहचानने लगेंगे, शांति मेरा मूल स्वभाव है, मन शांत हो जाएगा, स्टिलनेस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। और ये जब मन को हमने शांत किया, अपने अंदर में झांका, खुद को महसूस किया कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, एक शक्ति दिव्य स्वरूप हूँ। इसलिए कई लोग समझते आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर निर्लेप होती तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा क्यों कहते हैं? आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो जरूर शुद्ध स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और जब आत्मा खुद को भूल जाती है, दे अभिमान में आ जाती है, तो जैसे आत्मा पर दाग लगता है। शरीर पर दाग मिटाना तो सहज है, वस्त्रों पर दाग लगता है मिटाना सहज है, आत्मा पर दाग लग सकता है। और वो आत्मा पर अगर दाग लग गया तो जन्म जन्म तक भी चल सकता है। शरीर के दाग तो यहीं खत्म हो जाएंगे शरीर के साथ। तो आत्मा को पहचानना माना खुद को पहचानना, अपने असली स्वरूप को पहचानना, अपने असली गुणों को पहचानना, अपने असली धाम को पहचानना। इस संसार में तो हम एक मेहमान हैं, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। तो मुसाफिर खाने में मेहमान आता है, अपनी मुसाफरी करके वापस घर जाना है। इसीलिए कहा जाता है हम दो दिन के मेहमान हैं, भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। तो कहाँ है भगवान का घर? क्योंकि जो भगवान का घर है वही हमारा भी घर है, वो आत्मा का भी घर है। इसीलिए भगवान के घर से आए। बच्चे का घर बाप का ही घर होता है, बच्चे का घर अलग नहीं होता है अपने पिता के घर से। हाँ, बड़ा हो गया तो दूसरा घर बना लेता है, लेकिन पैदा होते तो माँ बाप का ही घर में है ना। तो आत्माओं का घर कहाँ है? आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान को पुकारते, हे भगवान मुझे उठा लो इस दुनिया से, जीना नहीं है। तो दुखी होके पुकारती है, इसका मतलब शांति चाहती है। तो कहाँ मिलेगी उसे शांति? आत्मा का जो धाम है वो शांति का धाम है। इसलिए संसार से कभी कभी हम होम सिक हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, संसार से नहीं जीना है। कितने क्यों सुसाइड करते हैं? जीवन तो बहुत सुंदर है लेकिन नहीं जीना है। तो समझते बस मर जाएंगे तो शांति मिलेगी। वास्तव में हम कहते हैं राजयोग का अभ्यास करो तो आपको जीते जी इतनी शांति मिलेगी जो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। और वो कैसे करो? हे भगवान ऐसे मत कहो, मुझे उठा लो ये मत कहो, लेकिन क्या कहो? मैं आत्मा उस शांति धाम की वासी हूँ। मन से चले जाओ उस धाम में जो पांच तत्वों से पार का धाम है, जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। परमात्मा कहते वो भी वो मेरा धाम है, चले आओ मेरे पास। और ऐसे महसूस करो कि जैसे मैं आत्मा उस धाम में विराजमान हूँ, जिसको शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, कई नामों से हम याद करते हैं, परलोक, ये सब नाम उसी धाम के हैं, जो हम आत्माओं का निवास स्थान है, जो अखंड ज्योति का एक महतत्व है। उस महतत्व में हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में निवास करते हैं, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है। तो मन बुद्धि से उड़ जाओ उस वतन में और महसूस करो कि मैं आत्मा एक अखंड ज्योति के महतत्व में हूँ और एक अति सूक्ष्म चेतन सत्ता हूँ। और फिर अपने गुणों का आह्वान करो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे आपने ये संकल्प किया मानो आपने अपने आप को पहचान लिया। तो क्या है आत्मा की पहचान? आत्मा माना एक दिव्य ज्योति, आत्मा माना जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की स्वरूप है, जो मन बुद्धि संस्कार का एक समूह है, जो शरीर में या टेम्पररी एड्रेस में रहता है ये भ्रकुटी, और परमानेंट एड्रेस वो परमधाम है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक एक्टर बन के आया है। बस मंच एक्टर का घर नहीं होता है, पर क्यों एक्टर बन के घर आया, क्यों एक्टर बन के मंच पर आया, सबसे अच्छे से अच्छी एक्टिंग करो, सबसे अच्छे से अच्छी एक्टिंग, हीरो हीरोइन की एक्टिंग माना सबसे बढ़िया एक्टिंग। और क्या एक्टिंग बढ़िया होती है आत्मा की, जब आत्मा इन गुणों को व्यक्त करे कर्मों में, वचन में, मन से। तो मन वचन कर्म से इन गुणों को मैं व्यक्त करूं, ये सबसे अच्छी एक्टिंग होगी। तो तीन लक्ष्य लेकर के आत्मा इस संसार में आई। एक तो एक्टर बन करके ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करके कर्म करना है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कर्म भी कैसे करेगी, आप अपने इक्विपमेंट्स के बिना सर्जरी कैसे करेंगे। तो शरीर एक साधन हो गया, तो आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, वचन बोलती है, और शरीर में है तो मन भी चलता है। तो मन वचन कर्म से मैं गुणों को व्यक्त करूं, जो मेरे कोर वैल्यूज है, उनको ही कहेंगे जीवन का लक्ष्य। और तीसरी बात, परमात्मा का नाम रोशन करूं। मेडिकल प्रोफेशन में आपको हिपोक्रेट्स लॉ बताते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है क्या क्या नियम होने चाहिए डॉक्टर्स के, उन पर हम चलते हैं। मेडिकल प्रोफेशन इज अ सेल्फ एक्सटिंक्टिंग प्रोफेशन, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज एक्चुअली एन आइडियल वे ऑफ सर्विंग पीपल। तो जब हम ये समझते हैं तो आत्मा को तो और भी ऊंचे रूप से हम समझेंगे कि कैसे इन गुणों को व्यक्त करना और ईश्वर का नाम रोशन करना है। इसलिए हम इस संसार में आए हैं, जिस भगवान ने हमें दुनिया में भेजा। और ये जब बुद्धि में आएगा तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हम क्या महसूस करेंगे, न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये अभिनय हूं, मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूं। बी रिलैक्स्ड, सब दृश्यों को देखें, न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है, और नकारात्मक विचारों को हटा करके केवल सकारात्मक विचार मन में लाना, ये राजयोग का प्रारंभ है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे 5-7 मिनट के लिए, और जैसे हम आपको चिंतन देंगे उसी प्रकार ये चिंतन अपने मन में लाना और उसी अनुसार अनुभव करना, क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही अनुभव होगा। तो चलिए ये लाल प्रकाश जो जलाया जाता है, ये आत्मा के घर का सूचक है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर हूं। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मेरा असली धाम 5 तत्वों से पार शांति धाम है। अब मुझ आत्मा को वापिस अपने घर जाना है। तो सीधा बैठेंगे, मन को बिल्कुल हल्का करते हैं। अंतर में खुशी लाएं कि मैंने अपने आप को पहचान लिया है। मैं आत्मा हूं। चिंतन करे मन में, मैं आत्मा, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। अपने विचारों को दो नेत्रों के बीच भ्रकुटी पर ले आए, वहीं फोकस करें। ये शरीर मेरा एक साधन है, एक वस्त्र है, इस वस्त्र को धारण करने वाली मैं आत्मा, इस शरीर से अलग हूं। एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ सितारा, भ्रकुटि के मध्य चमक रहा हूं। यह सृष्टि एक रंगमंच है, जहां मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ बजाती आई हूं। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए, अनेक पाठ बजाए, अब मुझ आत्मा को वापिस जाना है। पांच तत्वों से पार अपने धाम में, जहां सूर्य चंद्रमा सितारे इनका भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। अखंड ज्योति का एक महतत्व है, मन और बुद्धि से उस महतत्व को देखो, अनुभव करें एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, जहां असीम शांति है, बेहद प्रकाश ही प्रकाश है। इस बेहद प्रकाश की दुनिया में मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा अति सूक्ष्म सितारा चमक रहा हूं। यहां बेहद शांति ही शांति है। निरसंकल्पता है। यहां मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। स्वरूप है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र हूं। सर्व हदों से पार बेहद में हूं। शुद्ध स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हूं। अत्यंत हल्के हूं। एक दिव्य शक्ति हूं। आनंद स्वरूप हूं। प्रेम स्वरूप हूं। अति शुद्ध और पवित्र हूं। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान रही हूं। शांति की शक्ति अनुभव हो रही है। चले जाइए इस शांति की गहराई में। मन एकदम शांत हो जाए। शांति की शक्ति अनुभव करें। आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित है। और गहराई में जाए, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा रही हूं। अब यही अनुभव अपने अंदर भरपूर करके वापस लौटे। कर्म क्षेत्र पर अपने शरीर में और फिर से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करें, पर एक नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ, क्योंकि मैंने अब अपने आप को पहचान लिया है। अपने सत्य स्वरूप को जान लिया है। और यही अनुभव हमें व्यवहार में भी करना है, तब ये जीवन सार्थक होगा। यही जीवन का लक्ष्य है। ओम।